नमस्कार भारत, आज है 24 फरवरी दिन शनिवार। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर और कड़े प्रतिबंध लगाए।
We imposed today the heaviest sanctions ever imposed on a country before.
H-1B वीजा हासिल करना अब पहले से ज्यादा मुश्किल हुआ।
They are limiting Indian IT consulting industry to small to medium size Indian consultants.
दिल्ली में आम आदमी बनाम मुख्य सचिव विवाद में अब आगे क्या?
बीजेपी इस वक्त मुझे लगता है कि एक सीक्रेट सर्वे करा रही होगी दिल्ली के अंदर। अगर पॉलिटिकली उनको लगेगा कि इस वक्त सरकार को बर्खास्त करके वो दोबारा जीत सकते हैं तो बर्खास्त कर दें।
सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये प्रतिबंध उत्तर कोरिया की शिपिंग इंडस्ट्री के खिलाफ लगाए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे उत्तर कोरिया के खिलाफ अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध बताया है। इन प्रतिबंधों को उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम को रोकने का एक और प्रयास बताया जा रहा है। सीरिया में जारी संघर्ष को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संघर्ष विराम का प्रस्ताव लाने के लिए होने वाली वोटिंग शनिवार तक के लिए टल गई है। इससे पहले गुरुवार को इसी संदर्भ में हुई बैठक बेनतीजा रही थी, क्योंकि रूस ने पेश किए गए प्रस्ताव में संशोधनों की मांग की थी। इसके बाद फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लिखित रूप से कहा था कि वे संघर्ष विराम की कोशिशों का समर्थन करें। वहीं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस प्रस्ताव के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले वह इस बात की पुष्टि चाहता है कि सभी पक्ष इस संघर्ष विराम का पालन करेंगे। सर्गेई लावरोव ने कहा,
ответов на вопрос, а где гарантии, что боевики будут соблюдать эту гуманитарную паузу, и где гарантии, что они не продолжат?
क्या इस बात की कोई गारंटी है कि विद्रोही समूह भी इस संघर्ष विराम का पालन करेंगे? क्या इस बात की कोई पुष्टि कर सकता है कि दमिश्क के रिहायशी इलाकों में हमला वे नहीं करेंगे? हमें तो इस तरह की कोई गारंटी नहीं मिली है, इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी प्रस्ताव पारित हो वह कारगर भी साबित हो और सभी पक्ष उसका पालन भी करें। ये थे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में शुक्रवार को हुए दो बड़े बम धमाकों में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिहादी संगठन अल शबाब ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। एक आत्मघाती हमलावर ने राष्ट्रपति निवास के नज़दीक एक कार में खुद को बम से उड़ा दिया, जबकि दूसरा धमाका राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के समीप हुआ। कुछ दिन पहले ही सोमालिया में पुलिस, खुफिया विभाग और सेना के नए प्रमुखों ने अपना अपना पदभार संभाला है। अमरीकी गृह मंत्रालय ने बताया है कि यरूशलम में अमरीका का नया दूतावास मई में खुल जाएगा। इसी वक्त पर इसराइल अपनी स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ भी मनाएगा। पिछले साल दिसंबर में जब अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी थी, तब काफ़ी विवाद हो गया था। फिलिस्तीन के एक वरिष्ठ अधिकारी सेब इरेकत ने इसे उग्र करने वाला कदम बताया है। इरेकत ने कहा,
अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन टू चूज द डेट ऑफ द पैलेस्टिनियन कैटास्ट्रोफी द नकबा।
अमरीकी प्रशासन ने अपना दूतावास खोलने की तारीख फिलिस्तीन की तबाही की तारीख के साथ चुनी है। यह दर्शाता है कि अमरीका को इस बात का कोई एहसास नहीं है कि इस पूरे इलाके में कैसे हालात हैं। साथ ही यह फैसला साबित करता है कि अमरीका इस इलाके में समस्या का समाधान निकालने की जगह समस्या को और अधिक बढ़ाने पर जोर दे रहा है। ये थे फिलिस्तीन के एक वरिष्ठ अधिकारी के शब्द। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी ने इस हफ्ते की शुरुआत में बोको हराम के जरिए स्कूली छात्राओं के अपहरण की घटना को राष्ट्रीय आपदा करार दिया है। उन्होंने कहा कि छात्राओं को सुरक्षित बचाकर लाने के लिए और अधिक संख्या में सेना की टुकड़ियां और एयरक्राफ्ट को भेजा गया है। चार दिन पहले उत्तर पूर्वी नाइजीरिया के दाबची शहर में चरमपंथियों ने हमला कर कई छात्राओं का अपहरण कर लिया था। आशंका जताई जा रही है कि छात्राओं की संख्या 100 के करीब हो सकती है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत में अभिवादन स्वीकार करें संदीप सोनी का। अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर कुछ और प्रतिबंध लगा दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि इससे उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम को रोकने में मदद मिलेगी। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए नवीन नेगी से।
अमेरिका ने उत्तर कोरिया की शिपिंग इंडस्ट्री के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे उत्तर कोरिया के खिलाफ लगाए गए तमाम प्रतिबंधों में अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध कहा है। इन प्रतिबंधों को उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम को रोकने के एक और प्रयास के तौर पर बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा,
We impose today the heaviest sanctions ever imposed on a country before.
हम उन पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इससे कुछ बेहतर ही होगा। आने वाले वक्त में इन प्रतिबंधों के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।
I want to let you know, we have imposed the heaviest sanctions ever imposed.
अमेरिका की तरफ से लगाए गए इन नए प्रतिबंधों में इस बार जहाज और नौवहन परिवहन संबंधी 50 से अधिक कंपनियों को निशाना बनाया गया है। इनमें से 16 कंपनियां उत्तर कोरिया, जबकि 5 हांगकांग, 2-2 कंपनियां चीन और ताइवान, जबकि 1-1 पनामा तथा सिंगापुर में रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीव म्यूचिन ने मीडिया से कहा,
Our actions target shipping and trade companies.
हमारी कार्रवाई के निशाने पर वे शिपिंग और व्यवसायिक कंपनियां हैं जो हमारी जानकारी के अनुसार उत्तर कोरिया के साथ काम कर रही हैं। हमारे इस कदम से उत्तर कोरिया की सामुद्रिक गतिविधियों को जबरदस्त झटका लगेगा। उत्तर कोरिया पर उसके परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल परीक्षणों की वजह से अमरीका समेत कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध पहले से ही लगे हुए हैं। पिछले साल दिसंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाते हुए उसे होने वाले पेट्रोल के आयात पर 90% तक रोक लगा दी थी। इसके बावजूद उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों और अमेरिका तक मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण पिछले साल तक करता रहा।
रिपोर्ट सुना रहे थे नवीन ने की। विदेशियों को काम करने के लिए दिए जाने वाले H-1B वीज़ा के नियम अमेरिका ने और मुश्किल कर दिए हैं। अब इसके कारण भारत के पेशेवर लोगों को H-1B वीज़ा हासिल करने में और दिक्कतें आ सकती हैं। न्यूयॉर्क से सलीम रिज़वी की रिपोर्ट।
अमेरिका के अप्रवासन विभाग की नई अधिसूचना के अनुसार अब H-1B वीज़ा हासिल करने के लिए कंपनियों को अमेरिका में कर्मचारियों और उनकी नौकरियों से संबंधित और ज्यादा सबूत और दस्तावेज जमा कराने होंगे। अब इस नियम को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे विदेशी कर्मचारियों को नौकरी देने वाली कंपनियों को H-1B वीजा हासिल करने में अधिक मुश्किल का सामना होगा। भारतीय मूल के अमरीकी वकील अश्विन शर्मा H-1B वीजे मामले पर गहरी नजर रखते हैं। वो कहते हैं कि अमरीका की इस नई नीति के नतीजे में IT क्षेत्र में बहुत से भारतीय पेशेवर लोगों को मुश्किल होगी।
industry जो small to medium size Indian consulting firms हैं उनको भी नाम और निशान मिटाना चाहते हैं।
ये फैसला ऐसे समय में आया है कि जब अप्रैल महीने में ही H-1B वीजे के लिए कंपनियों द्वारा आवेदन भरे जाएंगे। हर साल 65,000 H-1B वीजा जारी किए जाते हैं, जिनमें से 70% से ज्यादा भारतीय कंपनियों द्वारा हासिल किए जाते रहे हैं। नए नियमों के अनुसार जब विदेशी पेशेवर कामगारों को तीसरी कंपनी में काम के लिए नियुक्त किया जाए तो उस कंपनी में भी उस कर्मचारी के काम और उसकी नौकरी से संबंधित सारी जानकारी अप्रवासन विभाग को दी जाए, जिससे ये साबित किया जा सके कि जिस कर्मचारी को जिस काम के लिए H-1B वीजा जारी किया गया है वो कर्मचारी वही काम कर रहा है। अब तक 3 वर्षों के बाद H-1B वीजे की मियाद बढ़ाने के लिए अधिकारीगण तीसरी कंपनी और कर्मचारियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट या नौकरी के अन्य विवरण, जैसी नौकरी शुरू करने की तिथि या काम करने की जगह के बारे में नहीं पूछते थे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन यानी अमरीकी चीजें खरीदे और अमरीकी लोगों को नौकरियां दें नामी अध्यादेश में विदेशी कर्मचारियों के बजाय अमरीकियों को नौकरियां देने की बात कही गई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि अमरीका में IT क्षेत्र में पेशेवर कर्मचारियों की कमी है, जिसे विदेशी पूरा करते हैं। एक बार फिर अश्विन शर्मा।
H-1B वीजा जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीजा अमेरिका के लिए, क्योंकि हमारे जो स्किल्स गैप यहाँ है ये H-1B वर्कर्स फिल करते हैं। वो जो रिसोर्सेज हैं कहीं से तो ले आना पड़ेगा, right? But the thing is ki ye apne pair mein hi کہاڑی مار رہے ہیں کیونکہ یہ پروگرام کو یہ لمٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ امریکنز کو وہ جابز ملنی چاہیے لیکن وہ امریکنز کمپیوٹر انجینئرز وغیرہ پیدا نہیں کرتا امریکہ
ڈونلڈ ٹرمپ کے ستا میں آنے کے بعد سے ہی ایچ ون بی ویزے کو لے کر بھارت میں آئی ٹی چھیتر کی کمپنیوں اور پیشیور لوگوں میں بے چینی تھی بھارتیہ سرکار یہ کہتی رہی تھی کہ ٹرمپ پرشاسن کے ساتھ ایچ ون بی مدے پر اچ استر پر بات چیت ہوتی رہی ہے اور بھارت اس سلسلے میں اپنی چنتاؤں سے امریکہ کو اوگت کراتا رہا ہے لیکن اب اس تازہ فیصلے کے بعد لگتا نہیں ہے کہ ٹرمپ پرشاسن نے بھارت دوارا اٹھائی گئی چنتاؤں کو زیادہ مہتو دیا ہے سلیم رضوی نیو یارک
بی بی سی انڈیا بول
کینیڈا کے پردھان منتری جسٹن ٹروڈو جب بھارت پہنچے تو نہ پردھان منتری نریندر مودی اور نہ ہی ان کی کیبنٹ کا کوئی بڑا منتری ان کی اگوانی کرنے پہنچا سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا کینیڈائی پردھان منتری کو بھارت سرکار نے ضروری سمان نہیں دیا کیا اس کے پیچھے کینیڈا میں خالستان کے وچار کو کتھت سرکاری سمرتھن ہے یہی ہے اس بار بی بی سی انڈیا بول کا وشے کاریکرم میں شامل ہونے کے لیے 24 فروری شنیوار شام 7:30 بجے سے 8 بجے کے بیچ مفت فون کریں 1811-7000 اور 1811-7001 پر
بی بی سی انڈیا بول
شروتاؤں آپ جانتے ہیں دلی میں ان دنوں راجنیتی کافی گرمائی ہوئی ہے دلی پولیس نے مکھیہ منتری اروند کیجریوال کے آواز پر جا کر سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگالے ہیں معاملہ مکھیہ سچیو انشو پرکاش سے کتھت روپ سے ہوئی مار پیٹ کا ہے سنیے دل نواز پاشا کی رپورٹ
اروند کیجریوال دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ وہ راجنیتی بدلنے آئے ہیں لیکن اب ان کی پارٹی کے نیتاؤں پر پردیش کے سب سے بڑے ادھیکاری نے مار پیٹ کے سنگین آروپ لگا کر ان کے راجنیتک طور طریقوں کو سوالوں کے گھیرے میں کھڑا کر دیا ہے کیجریوال کا ترک ہے کہ پرمکھ سچیو انشو پرکاش نے جھوٹے آروپ گڑے ہیں لیکن کیا اس استر کا ادھیکاری جھوٹ بولے گا دلی کے پورو سچیو امیش سہگل کو ایسا نہیں لگتا
یہ پولیٹیشن نہیں ہے یہ تو نوکری تھی کترے پہ ذرا بھی کوئی جھوٹ نکلے آپ نے ایک پولیس کمپلینٹ کی ہے اس کے اوپر پورا جوڈیشل وہ ہوگی ہائی کورٹ اس کو دیکھ سکتا ہے سپریم کورٹ اس کو دیکھ سکتا ہے اگر وہ جھوٹی نکلی تو آپ ہیل بین سیریس ٹرپل یہ ان کو پتا بھی ہے اور کوئی کرے گا کیوں کوئی اس کا مقصد ہونا چاہیے ان کا کیا مقصد ہے انہوں نے تو کل الیکشن لڑنی نہیں
سہگل کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ پورا وواد عام آدمی پارٹی کی ٹکراو کی راجنیتی کا نتیجہ ہے وہیں ورشٹھ پترکار پرمود جوشی کا ماننا ہے کہ افسر شاہی سے ٹکراو راجنیتی کو غلط دشا میں لے جائے گا
پچھلے 3 سال سے تو کم سے کم ہم لگاتار راجنیتک ٹکراو کے روپ میں تو دیکھ ہی رہے ہیں وہ صاف ہے ایک سمے تک پردھان منتری نریندر مودی کو لے کر کے کیجریوال کے بیان تھے پھر وہ پچھلے کچھ سمے سے وہ رک گئے یا کسی وجہ سے روک دیے گئے لیکن اگر بیوروکریسی کو اس میں شامل کریں گے نا تو اس سے ایک جو دشا ہے وہ خراب راستے پر چلی جائے گی کیونکہ بھوشیہ میں جو راجنیتک جھگڑے فساد اور جو سمبھو ہے وہ تو ہوگا راجنیتی میں لیکن جو نہیں ہونا چاہیے جو اسمبھو ہے اس کو کیا جائے گا تو اچھا نہیں لگے گا
دوسری اور وپکشی بھارتیہ جنتا پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ وواد اروند کیجریوال کی تاناشاہی راجنیتی کی جھلک ہے دلی سے سانسد اور بھاجپا پروکتا میناکشی لیکھی کہتی ہیں
جو پالیٹکس راجنیتی جو ہے لوکتنتر کے اندر لوکتانترک بھاشا کے انوسار ہوتی ہے لیکن جو لوگ لوکتنتر کی بھاشا کو نہیں سمجھتے اور اس طریقے سے کام نہیں کرتے ان کے پچھلے 4 ورشوں کے کریا کلاپ اٹھا کے دیکھ لیجیے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ان کی راجنیتی جو ہے وہ انارکسٹ راجنیتی ہے جو کہ کسی قاعدے قانون کو نہیں مانتی
وہیں عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی دلی میں کیجریوال سرکار کو برخاست کرنے کا موقع تلاش رہی ہے پارٹی ودھایک سوربھ بھاردواج کہتے ہیں
دیکھیے بی جے پی اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ایک سیکرٹ سروے کرا رہی ہوگی دلی کے اندر اگر پولیٹیکلی ان کو لگے گا کہ اس وقت سرکار کو برخاست کر کے وہ دوبارہ جیت سکتے ہیں تو برخاست کر دیں گے اگر سروے میں آئے گا کہ اروند کیجریوال دوبارہ آ جائے گا تو وہ برخاست نہیں کریں گے باقی کچھ نہیں ہے اس کا
اس پورے گھٹنا کرم پر سبھی پکشوں کے اپنے ترک ہیں لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ 3 دنوں سے دلی سرکار کا کام کاج پوری طرح ٹھپ ہے دلنواز پاشا بی بی سی
اور نوین نیگی میرے سہیوگی تیار ہیں ایک دم یہ بتانے کے لیے کہ دلی سے چھپنے والے آج کے اخبار کیا کہہ رہے ہیں
انڈین ایکسپریس نے اپنے پہلے پیج پر دلی میں مکھیہ منتری آواس میں دلی پولیس کے تلاشی ابھیان کی خبر کو پرمکھتا سے پرکاشت کیا ہے मुख्य सचिव के साथ हुई कथित मारपीट के सिलसिले में पुलिस ने ये तलाशी ली थी और मुख्यमंत्री आवास में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया था।
इसके अलावा और क्या छपा है आज?
इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक में जो घोटाला हुआ है उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है।
क्या कह दिया उन्होंने? अब
टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार जनता के पैसे की लूट नहीं होने देगी और कहा है कि किसी भी तरह की अनियमितता के खिलाफ सरकार कड़े कदम उठाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ना तो नीरव मोदी का नाम लिया ना ही पंजाब नेशनल बैंक का जिक्र किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात को बड़ी सी तस्वीर के साथ प्रकाशित किया है अपने पहले पन्ने पर। अखबार ने लिखा है कि दोनों देशों ने चरमपंथ से मिलकर मुकाबला करने की बात कही है। खबर में आगे लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रूडो के बीच लगभग 2 घंटे लंबी बातचीत हुई और उसके बाद भारतीय पीएम ने कहा कि देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी धार्मिक संगठन को वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने केरल राज्य की खबर को अपनी एंकर स्टोरी बनाया है जिसमें बताया गया है कि केरल में एक मानसिक रूप से कमज़ोर आदिवासी युवक को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। खबर में यह भी बताया गया है कि उस युवक ने किसी दुकान से खाने का कोई सामान चोरी किया था जिसके बाद भीड़ ने उसे इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात थी कि जिस समय युवक को पीटा जा रहा था उस वक्त कई लोग सेल्फी ले रहे थे।
अखबारों की सुर्खियां नवीन नेगी से जानने के बाद आइए एक नज़र खेल की खबरों पर।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए पिछले 2 T20 मैचों के नतीजों के बाद आज होने वाला तीसरा और आखिरी मैच फाइनल की तरह खेला जाएगा क्योंकि इसे जीतने वाली टीम सीरीज अपने नाम कर लेगी। जोहानसबर्ग में 18 फरवरी को खेले गए मैच में भारत ने जीत हासिल की थी लेकिन 21 फरवरी को सेंचुरियन में खेले गए मुकाबले में उसे मेजबान टीम से हार का सामना करना पड़ा। पहले मैच में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने अच्छा कमाल दिखाया था, वहीं दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को उसके बल्लेबाजों की वजह से जीत मिली। नंबर 3 पर अमूमन बल्लेबाजी करने वाले भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली इस सीरीज में अपनी जगह सुरेश रैना को उतार रहे हैं। रैना का कहना है कि वो कप्तान के भरोसे पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बात करें महिला क्रिकेट की तो सीरीज में 2-1 की बढ़त बना चुकी भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के 5वें और आखिरी T20 मैच में उतरेगी। भारत का इरादा वनडे के बाद इस प्रारूप में भी सीरीज अपने नाम करने का होगा। साथ ही दक्षिण कोरिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए कल हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान किया। 3 से 12 मार्च के बीच होने वाली इस टेस्ट सीरीज में कुल 5 मुकाबले खेले जाएंगे। टीम की बागडोर रानी रामपाल के कंधों पर होगी जबकि चोट से पूरी तरह उबर चुकी पूनम रानी मलिक करीब 1 साल बाद भारतीय टीम में वापसी कर रही हैं।
अभी कुछ ही दिन पहले वरिष्ठ पत्रकार आशीष रे की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसका नाम है लेट टू रेस्ट द कंट्रोवर्सी ओवर सुभाष चंद्र बोस डेथ। इसमें कहा गया है कि नेताजी की मौत साल 1945 में उस विमान दुर्घटना में हुई थी जो ताइवान से जापान जाते समय दुर्घटना का शिकार हो गया था। इस किताब के बहाने नेताजी के जीवन के आखिरी 48 घंटों पर रोशनी डाल रहे हैं रेहान फजल विवेचना में।
गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है।
ये आवाज है उस शख्स की जिसने अपनी बहादुरी और देशभक्ति के जज्बे से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की चूलों को हिला कर रख दिया था। कुछ इतिहासकारों ने तो उन्हें हिज मैजेस्टीज बिगेस्ट ओपोनेंट की संज्ञा दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अगस्त 1945 में जब दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हो गई तो उनके सहयोगियों ने तय किया कि नेताजी को तुरंत सिंगापुर छोड़कर रूस चले जाना चाहिए। वो सिंगापुर से बैंकॉक होते हुए पहले साइगोन और फिर ताइपे पहुंचे। ताइपे से दोपहर 2:35 पर जापानी बॉम्बर ने मंचूरिया के लिए उड़ान भरी। सुभाष बोस के अंतिम दिनों पर लेट टू रेस्ट किताब लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार आशीष रे बताते हैं।
कम से कम 13-14 क्रू और पैसेंजर थे उस प्लेन में, उसमें से 2 भारतीय थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनका ADC कर्नल हबीबुर रहमान। साइगोन में ये चर्चा हो रहा था कि किस प्लेन में उनका जाना है। अंत में ये सिद्धांत हुआ, जो प्लेन में उनका जाना था उस प्लेन में जापानी एक जनरल शिदेई थे, और जनरल शिदेई के साथ जाने का एक मतलब था। जनरल शिदेई रशियन भाषा बोलते थे। जब जापान का सरेंडर होने वाला था, जापानी सरकार का आशा था कि उन्होंने रशियन के साथ नेगोशिएट करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सोवियत यूनियन में जाने का एक मौका तैयार कर सकते। लेकिन हुआ ऐसा, प्लेन तो जैसा था उस जमाना का बॉम्बर, छोटा प्लेन, उसमें सीट बोल के कुछ था नहीं, बल्कि पायलट का सीट और 2 सीट। उसमें जो सामने एक सीट था पायलट को, पायलट के बाद उस सीट नेताजी का ऑफर किया, लेकिन नेताजी ने कहा कि मैं उधर नहीं बैठूंगा। तो बाकी सब नेताजी को लेके ही मट्टी में, मतलब फ्लोर में बैठा। दुर्भाग्य का बात था कि जहां सुभाष बोस बैठे थे उनका ऊपर एक पेट्रोल टैंक था, और जब प्लेन क्रैश हुआ तो वो पेट्रोल पूरा उनका शरीर में गिर गया, मतलब एकदम सिर से पांव तक, और उनका पूरा कपड़ा भी एकदम भींग गया ये पेट्रोल में। तो जब क्रैश के बाद आग के भीतर से उन्होंने दौड़ के जब निकल रहा था तो पूरा शरीर में आग लग गया।
दिलचस्प बात ये थी कि उस जमाने में युद्धक विमानों में एयर कंडीशनिंग नहीं होती थी, इसलिए जैसे जैसे विमान ऊपर जाता था ठंड बढ़ती जाती थी, और हर 1,000 फीट की ऊंचाई पर तापमान में 6 डिग्री की गिरावट हो जाती थी।
उनका टाइपे तक सिर्फ कॉटन खाकी यूनिफॉर्म पहना हुआ था, लेकिन कर्नल हबीबुर रहमान, उनका ADC, कहा कि नेताजी आप एक स्वेटर पहन लीजिए क्योंकि अभी ठंड होने वाला है। उनका एक स्वेटर दिया, लेकिन उसका ऊपर भी पेट्रोल गिर गया। अंत में कर्नल हबीबुर रहमान और 5 जापानी ऑफिसर ने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और नेताजी का क्या हुआ। उसमें कहा कि जब हबीब ने पहुंचा नेताजी के पास प्लेन का कम से कम 10-12 गज या 15 गज सामने क्रैश के बाद, तब नेताजी उनका स्वेटर खुल के खड़ा हुआ था, तब बाकी जापानीज ऑफिसर लोग भी वहां पहुंच गया, उनको कहा कि आप मट्टी को ऊपर रोल करिए तब आग कम से कम वो बुझ जाएगा।
कर्नल हबीबुर रहमान आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए थे, और जब नेताजी की मौत की जांच के लिए शाहनवाज आयोग बनाया गया था तो वो उसके सामने गवाही देने खास तौर से पाकिस्तान से भारत आए थे। उन्होंने शाहनवाज आयोग को बताया था।
जैसे ही जहाज गिरा नेताजी मेरी तरफ मुड़े, मैंने उनसे कहा कि नेताजी आगे निकलिए, पीछे से रास्ता नहीं है। आगे के रास्ते में आग लगी हुई थी, नेताजी आग से होकर निकले, मैं भी उसी आग से होकर बाहर आया। जैसे ही मैं बाहर आया मैंने देखा कि नेताजी मुझसे 10 मीटर की दूरी पर खड़े थे और उनकी निगाह पश्चिम की ओर थी, उनके कपड़ों में आग लगी हुई थी। मैं उनकी तरफ दौड़ा और मैंने बहुत मुश्किल से उनकी बुश शर्ट बेल्ट निकाल ली, फिर मैंने उन्हें जमीन पर लेटा दिया। मैंने देखा कि सिर के बाएं हिस्से में 4 इंच लंबा गहरा घाव था। मैंने रुमाल से उसमें से निकल रहे खून को रोकने की कोशिश की। तभी नेताजी ने मुझसे पूछा, आपको कहीं ज्यादा तो नहीं लगी? मैंने कहा मैं ठीक हूं। उन्होंने कहा कि मैं शायद बच नहीं पाऊंगा। मैंने कहा अल्लाह आपको बचा लेगा। बोस बोले, नहीं मैं ऐसा नहीं समझता, अब आप मुल्क वापस जाएं तो लोगों को बताना कि मैं आखिरी दम तक मुल्क की आजादी के लिए लड़ता रहा हूं, वो जंग आजादी को जारी रखें, हिंदुस्तान जरूर आजाद होगा।
जब विमान क्रैश हुआ तो उस समय ताइपे हवाई अड्डे पर किसी भी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए नेताजी को एक मिलिट्री ट्रक में डालकर ताइहोंगकू सैनिक अस्पताल पहुंचाया गया।
जब अस्पताल पहुंचा नेताजी जरूर होश में थे, और डॉक्टर के साथ भी बात भी हुआ। उन्होंने सबसे पहले कहा कि बाकी लोग का आप संभालिए तब मेरे पास आइए, तो वो बात सुना नहीं। डॉक्टर लोगों को कहा गया कि बहुत ही VIP नेता है, उनका बचाना है, उनका तुरंत आप ट्रीटमेंट कीजिए। ट्रीटमेंट तो चालू हो गया, लेकिन कभी कभी जरा बेहोश हो जाते थे, बट जब होश में फिर वापस आ रहे थे तो बात करते थे हबीब के साथ। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दिया कि क्या करना है, क्योंकि उनका एक चीज मालूम हो गया कि उनका बचने वाला नहीं है। उसका बीच डॉक्टर लोग एक इंटरप्रेटर को लाया, उनका नाम था जुइची नाकामुरा, क्योंकि डॉक्टर लोग जानना चाहते थे कि उनका क्या तकलीफ है, समझने में इसमें बेटर होगा, इसमें ट्रीटमेंट भी बेटर हो सकता। लेकिन हालत बहुत ही खराब था, बहुत ही कोशिश किया डॉक्टर लोग। उसके बीच कभी कभी हिंदुस्तानी में उन्होंने हबीब के साथ बात की, लेकिन जब इंटरप्रेटर पूछ रहा था तब अंग्रेजी में उनका जवाब दे रहे थे।
नेताजी को सबसे पहले देखने वालों में वहां तैनात डॉक्टर तानेयोशी योशिमी थे। उन्होंने 1946 में हांगकांग की एक जेल में उनको इंटरोगेट करने वाले ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन अल्फ्रेड टर्नर को बताया था।
3 बजे एक भारी शख्स को सैनिक ट्रक से उतारकर स्ट्रेचर पर लिटाया गया। उसका माथा, सीना, पीठ, गुप्तांग और हाथ और पैर सब बुरी तरह से जले हुए थे, यहां तक कि उनका दिल भी जल गया था। उनकी आंखें सूजी हुई थी, वो देख सकते थे लेकिन उन्हें अपनी आंखें खोलने में दिक्कत हो रही थी। उनको तेज बुखार था, 102.2। उनकी नाड़ी की गति थी 120 प्रति मिनट। उनके दिल को आराम पहुंचाने के लिए मैंने विटा कैम्फोर के 4 और डिजिटामाइन के 2 इंजेक्शन लगाए। मैंने उनको ड्रिप से 1500 सीसी रिंजर सॉल्यूशन भी चढ़ाया। इसके अलावा संक्रमण को रोकने के लिए मैंने उन्हें सल्फनामाइट का इंजेक्शन भी लगाया, लेकिन मुझे पता था कि बोस बहुत अधिक समय तक जीवित रहने वाले नहीं हैं।
वहां पर एक और डॉक्टर योशियो ईशी भी मौजूद थे। उन्होंने भी सुभाष बोस की हालत का विस्तृत विवरण खींचा है।
2 घायल लोग 2 पलंगों पर लेटे हुए थे। वो इतने लंबे थे कि उनके पांव पलंग से बाहर लटक रहे थे। एक नर्स ने मुझे बुलाकर कहा, डॉक्टर ये भारत के चंद्र बोस हैं, खून चढ़ाने के लिए मुझे इनकी नस नहीं मिल रही है, मेरी मदद कीजिए। मैंने जब खून चढ़ाने के लिए सुई उनकी नस में घुसाई तो उनका कुछ खून वापस सुई में आ गया। वो गाढ़े रंग का था। जब मौत नजदीक होती है तो खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और खून का रंग बदल जाता है।
18 अगस्त 1945 को रात के करीब 9 बजे सुभाष बोस ने दम तोड़ दिया। विमान उपलब्ध न होने के कारण उनके पार्थिव शरीर को न तो सिंगापुर ले जाया जा सका और न ही टोक्यो। 4 दिन बाद यानी 22 अगस्त 1945 को ताइपे में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। बाद में कर्नल हबीब ने भी जिक्र किया कि उन्हें क्रेमेटोरियम में सुभाष बोस का सोने से जड़ा दांत दिया गया था जो उनकी अस्थियों में मिला था।
जब कर्नल हबीबुर रहमान फिर क्रेमेटोरियम में गया नेताजी का एशेस लेने के लिए, तब वहाँ क्रेमेटोरियम के एक ऑफिसर, उन्होंने एक कागज के अंदर एक दांत उनका हाथ में दिया। गोल्ड प्लेटेड टूथ था, तो उन्होंने उस कागज जिसके अंदर दांत था वो उन्होंने डाल दिया वो अर्न के अंदर।
सुभाष बोस की बेटी डॉक्टर अनीता फाफ इस समय ऑस्ट्रिया में रहती है। उनकी दिली इच्छा है कि सुभाष बोस की अस्थियों को जापान से वापस भारत लाया जाए और गंगा में प्रवाहित किया जाए।
उनका पिता नेताजी का ये आशा था कि उन्होंने स्वाधीन भारत में वापस आएंगे और फ्री इंडिया में वो काम करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो उनका पहला अनुरोध ये है कि कम से कम उनका पिता का एशेज, नेताजी का एशेज भारत का मट्टी में लिया जाए, एक नंबर। 2 नंबर उन्होंने कहा कि मेरा फादर पूरी सेक्युलरिज्म में विश्वास करते थे, लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि हिंदुइज्म का अविश्वास करते थे। अगर हिंदू थे तो कम से कम उनका जो एशेज वो गंगा में इमर्स कर दिया जाए।
कदम कदम
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
और इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये प्रतिबंध उत्तर कोरिया की शिपिंग इंडस्ट्री के खिलाफ लगाए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे उत्तर कोरिया के खिलाफ अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध बताया है। सीरिया में जारी संघर्ष को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संघर्ष विराम का प्रस्ताव लाने के लिए होने वाली वोटिंग शनिवार तक के लिए टल गई है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम, हमें आपसे जोड़ रहे थे। अगला प्रसारण शाम 7:30 बजे, आप जानते हैं आज होगा इंडिया बोल। फिलहाल संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।